द्वारा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, समाचार पत्रिका परिक्रमा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, हर रोज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के समाचार, साथ ही देश भर में मौजूद हमारे संवाददाता अपनी विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आपको अलग अलग राज्यों की नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देते हैं। आर्थिक जगत की खबरों पर भी हमारी नजर रहती है, साथ ही हम आप तक पहुंचाते हैं कई सारी देश विदेश की खबरें। तो आइए शुरू करते हैं परिक्रमा कार्यक्रम। आज के अंक में आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of 3 semiconductor projects, says India is set to become a global hub in semiconductor manufacturing.
Kendra ne 3 lakh cadet riktiyon ke saath Rashtriya Cadet Corps ke vistar ko manzoori di.
New Haryana Chief Minister Naib Singh Saini wins the confidence vote today in a flow test conducted during a special assembly session.
सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया।
Union Minister Anurag Thakur launches revamped websites of Akashvani News and DD News today.
और दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Yoga Mahotsav. And Divya, yoga brings the body and mind together and is built on 3 main elements, movement, breathing and meditation. And yoga has many physical and mental health benefits, including improved posture, flexibility, strength, balance and body awareness. And the International Yoga Festival is an annual yoga event that celebrates the legacy of yoga. It is celebrated every year in India's yoga capital, Rishikesh, and which is also the birthplace of yoga. And the 100-day countdown to the International Day of Yoga begins with the Yoga Mahotsav. A report on the Yoga Mahotsav from a correspondent.
International Day of Yoga, IDY, is observed every year on 21st June. The theme of 10th edition of IDY this year is Yoga for Women Empowerment. The one-day Yoga Mahotsav 2024 organized today in New Delhi covered a range of activities after the inaugural session, including theme-based technical sessions on empowering women's health through yoga and transforming life through yoga. The event ended with a panel discussion on yoga and women empowerment different dimensions, why break and yoga demonstrations. The purpose of the 100 days countdown is to maximize the reach of yoga by garnering the support of leading yoga organizations, yoga gurus and other Ayush stakeholders. Anupam Mishra for Parikrama, New Delhi.
Abhishek, yoga संस्कृत का एक शब्द है और जो कि युज धातु से बना है और इसका मतलब है इकट्ठा होना या फिर बांधना। भारत की योग नगरी ऋषिकेश में 15 से 21 मार्च 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे स्थित मुनि की रेती में योग भारत घाट सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का केंद्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का नेतृत्व योग प्रशिक्षणकर्ताओं, आध्यात्मिक गुरुओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और इस दौरान प्रतिभागियों को योग और ध्यान के प्राचीन ज्ञान को गहराई से जानने का अवसर मिलेगा।
Yes, and the International Yoga Festival is truly a globally unique event. They're bringing together so many masters from so many traditions, cultures and countries in one sacred, beautiful place.
भारतीय दर्शन में षड् दर्शन में से एक योग है और योग के बारे में पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल चित्त एकाग्रता ही योग है और योग आत्मिक शांति और चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ये समझने से ज्यादा करने की विधि है, योग साधने से पहले योग के बारे में जानना बहुत जरूरी है अभिषेक। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग खुद से खुद को मिलाने की प्रक्रिया है।
Yes, truly said, yoga is a mirror to look at ourselves from within by a set of physical and mental exercises. It is intended to give control over the mind and body. And I'd like to point here something, Divya, that not everyone can do yoga. Everyone has a different body when it comes to size, shape, age, abilities, etc. And we should not compare ourselves to what we could do a few years back. Always listen to your body and try and understand what is trying to tell you. If a yoga pose hurts, back out of it, modify it, or don't do it at all. Before joining any yoga class, I'd like to mention here, Divya, that is try before you commit. Get a holistic perspective. Check out online classes. If in-person classes are not for you, a word of caution, don't try to do what you are not able to do. While stretching, avoid pain. Take things slow and be patient. And be regular, and gradually your body will adapt to the yoga postures.
बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि योग सबके लिए नहीं है, तो अपनी अपने शारीरिक जरूरतों के हिसाब से आप योगा के पोस्चर्स और आसन जो भी हैं वो तय करें। योग से काफी लाभ होता है, मन की शांति मिलती है, तनाव मुक्त जीवन होता है, शरीर की थकान जाती है, रोग से मुक्ति मिलती है शरीर को, और वजन पर काबू रखने में आप सफल होते हैं। सप्ताह के योग महोत्सव में विश्व स्तरीय योग शिक्षकों द्वारा 70 घंटे से अधिक योग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, और जो अयंगर योग, कुंडलिनी योग, क्रिया योग और पावर विन्यास योग जैसी विभिन्न योग शैलियों का अभ्यास करते हैं। श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु और संत प्रतिभागियों के समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए सत्संग और अन्य आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जाएंगे। तो आइए अब अभिषेक से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की उत्पत्ति और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं।
यस, एब्सोल्युटली दिव्या, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल वाज एन इवेंट प्रमोटेड बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म व्हेन ऋषिकेश वाज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ इट इज प्रमोटेड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड उत्तराखंड टूरिज्म डिवेलपमेंट बोर्ड। इन द बिगिनिंग इट वाज हेल्ड एट होटल गंगा किनारे ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। दिस फेस्टिवल कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स फ्रॉम द सेम वेन्यू। And at the same time, in 1999, Uttar Pradesh Tourism asked Parmat Niketan Ashram in Rishikesh to start hosting the International Yoga Festival. The meditation and yoga classes and other programs organized at the Parmat Niketan Ashram, and the participants stayed at other hotels and ashrams. Pujya Sri Swami Veda Bharatji guided the early meditation classes in the festival, and Yogacharya Shari Bharat Bhushanji conducted the yoga asanas sessions.
और अभिषेक, अपनी स्थापना के बाद से योग महोत्सव ऋषिकेश ने अपार लोकप्रियता हासिल की है, जो कि हर गुजरते साल के साथ बढ़ती ही जा रही है। 2010 में ऋषिकेश योग महोत्सव में सबसे व्यापक भागीदारी देखी गई। प्रतिभागियों की महत्वपूर्ण संख्या का कुछ श्रेय महाकुंभ मेले को भी जाता है, जो योग उत्सव ऋषिकेश के साथ मेल खाता है। जैसे जैसे योग के लाभ दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं, वैसे वैसे ऋषिकेश योग महोत्सव की लोकप्रियता भी बढ़ रही है।
Yes, and the International Yoga Festival is 70 hours of yoga classes divided into daily sessions, and during these sessions, the very first and main things participants learn different types of yoga, yoga asanas, yoga anatomy and meditation techniques. And I also like to talk about the benefits of yoga breathing exercises, Divya. There are many benefits of pranayam practice, like improved emotional responses, fatigue, stress and reduced anxiety in patients. And Divya, if you can't do any stretching exercises, at least try to do the anulom vilom, which is also known as alternate nostril breathing. It is a calming pranayam technique. It aids in balancing the flow of energy, reduces stress and enhances lung efficiency. And by practicing this technique, one can strengthen your respiratory system and build resistance against pollution-related ailments.
बिल्कुल अभिषेक, और इसमें कई आध्यात्मिक वक्ता, श्रद्धेय संत, योगाचार्य और गुरु प्रतिभागियों के जीवन को फिर से बनाने के लिए दिव्य ज्ञान भी प्रदान करते हैं। प्रतिभागी सकारात्मक और स्वस्थ जीवन जीने के लिए खुद को प्रेरित करने और और, और उत्थान करना, अपना उत्थान करना सीखते हैं इसमें।
Yes, and Divya, next comes the Ganga Aarti. Every day after sunset, the participants attend the Ganga Aarti on the river Ganga banks. The spiritual ritual uplifts their spirits and they participate in the mythical chants to seek blessings from Mother Ganga.
अभिषेक, यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं। सप्ताह भर चलने वाला योग उत्सव समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह है जो कि शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं। महोत्सव में हर दिन शाम को गंगा आरती के बाद कई सांस्कृतिक प्रदर्शन निर्धारित होते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों का उद्देश्य कलात्मक प्रदर्शन को देखकर, सुनकर और उसमें शामिल होकर मन को व्यवस्थित करना है।
Yes, Divya, but the daily schedule of the International Yoga Festival Week is different for each day. So let's have a quick look at this daily schedule. Classes start at 4 a.m. sharp.
और सुबह 6:30 बजे एक घंटे के लिए योग कक्षा होती है और कक्षा के बाद सादा नाश्ता दिया जाता है।
2-hour yoga sessions at 8:30 a.m. The session is of different kinds of yoga and the participants can join anyone as per their preference.
और सुबह 11 बजे योगाचार्यों और पूज्य संतों का व्याख्यान होगा।
Traditional Indian lunch starting from 12:30 p.m. till 1:30 p.m.
इसके बाद कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाएगा।
योगासन क्लासेस फ्रॉम 3:30 p.m. टू 5 p.m.
और शाम को गंगा आरती होगी 6 बजे से।
डिनर विल बी सर्व्ड एट 7 p.m.
रात्रि भोज के बाद सांस्कृतिक गीत, सत्संग, नृत्य प्रदर्शन, कैंप फायर आदि के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
एंड लाइट्स आउट एट 9:30 p.m.
और मध्य प्रदेश में, और अभिषेक, अब समय हो चुका है अपने संवाददाताओं के माध्यम से श्रोताओं को देश के अलग अलग भागों में होने वाली खबरों से अवगत कराने का। तो सबसे पहले कहाँ चले?
Yes, and I think we will start off with a story from Odisha. And after launching the Nocturnal Trail Initiative in Bharatpur Forest, the Forest Department introduced Night Out at Zoo in Nandankanan Zoological Park in Odisha for the first time to facilitate visitors to learn about the nocturnal species. Night Out at Zoo is an outstanding education program wherein participants can learn about the wonderful nighttime adaptations of nocturnal animals when the forest and their diverse inhabitants come to life. We have more from our Cuttack correspondent.
Night Out at Zoo, an educative program to study about the natural animals, has been launched in the Nandankanan Zoological Park in Odisha's Bhubaneswar 2 days back. Under the Night Out at Zoo initiative, as many as 20 participants can enjoy night safari in the Nandankanan Zoo on every Sunday. During the go-round, the visitors will acquire vivid knowledge on forest and wildlife, especially the life of natural animals and birds. The program aims to educate the participants regarding selected natural animals from the animal collection lodged in the Nandankanan Zoological Park. The zoo authorities would provide battery-operated vehicles, technical guides for the jungle safari without any charges. Students, environmentalists and forest and wildlife lovers can register their names online with an entry fee of ₹250 for each participant. Registered participants are required to report at the multi-level car parking facility of the Nandankanan Zoological Park at 6:15 p.m. whereas the night out at zoo starts at 8 p.m. Officials from zoo authority clarifies that during entry, visitors will also be prohibited from carrying any bag or luggages with them. Besides, participants will also not be allowed to bring their DSLR cameras or video recording instruments, as videography or photography is prohibited during the program. As per the zoo guidelines, participants of the night out program will be required to strictly follow the instructions of the assisting zoo education staff or volunteers. Tapan Mahalana for Parikrama from Cuttack.
और अभिषेक, अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी मिलेगी और इसके बाद सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रमिकों का मेहनताना बढ़ जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा।
मध्य प्रदेश में 2014 के बाद पहली बार मजदूरों की मजदूरी दरों में बदलाव किया गया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी श्रमिकों की जिंदगी में व्यापक बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किए जा रहे सबके विकास की कड़ी में श्रमिकों के उत्थान के लिए पहल की गई है। मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि जनवरी से जून 2019 के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर और 1 अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर निर्धारित की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 9,575 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10,571 रुपए प्रतिमाह होगा। वहीं कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 12,294 जबकि उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13,919 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। श्रमिकों की वेतन दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2019 से जून 2019 के आंकड़ों के औसत पर आधारित है। इसके अलावा कृषि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया गया है। अब उन्हें 7,660 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों एवं अगरबत्ती श्रमिकों के वेतन में भी देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम वेतन की दरें किसी भी श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। सरकार का यह भी कहना है कि यदि किसी श्रमिक की वर्तमान वेतन की दरें संशोधित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
Now we will take on a tour around India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 13th March 1940, revolutionary freedom fighter Shahid Udham Singh took revenge for the Jallianwala massacre and shot Michael O. Dyer, the Lieutenant Governor of Punjab, at the time of massacre.
Udham Singh was only around 19 years old when the whole nation was shocked by the brutal Jallianwala Bagh massacre. He had helped provide relief work to the victims of the massacre. Although determined to take revenge, Udham Singh waited for the right time.
Pagdi sambhal jatta, pagdi sambhal tera, lut gaya maal oye.
He joined other Indian revolutionaries and visited many countries, the ultimate destination being London. He used several aliases, including Sher Singh and Ram Mohammad Singh Azad. He went to Africa in 1920 and managed to reach America in 1924.
In America, Udham Singh oversaw revolutionary activities, forming close links with the Gadar Party and helping set up the Overseas Indians Association. In 1927, he returned to India with more than 24 aides and a cache of arms, but he was arrested shortly afterwards and sent to 5 years jail under the Arms Act. After his release in October 1931, he kept a low profile for a while, but then resumed underground activities, simultaneously looking at ways to reach Britain. The police kept a constant watch on him.
In 1934, however, he managed to reach London. He stayed in a house in East London and joined a socialist organization that worked for the cause of Indian workers. He bought a revolver and ammunition and waited for the right moment. On 13th of March 1940, a meeting of the Central Asian Society and East India Association was to be held at the Caxton Hall.
One of the speakers was Michael O. Dyer. Singh had found the right moment. He hid his revolver in a book and entered the hall. He stood by the wall. When the meeting ended, Udham Singh walked in the direction of the platform and fired. Michael O. Dyer was killed on the spot and two other British officials were injured. Singh had no intention of escaping and was immediately arrested. He was soon convicted and sentenced to death. During the trial, Udham Singh roared,
"Michael O. Dyer deserved it. He was the real culprit. He wanted to crush the spirit of my people, so I have crushed him. For 21 years, I have been trying to wreak vengeance. I am happy that I have done the job. I'm not scared of death. I'm dying for my country. I have seen my people starving in India under the British rule. I have protested against this. It was my duty. what greater honor could be bestowed on me than death for the sake of my motherland?
Udham Singh was hanged on 31st July 1940 at Pentonville Prison. We salute the great revolutionary freedom fighter. We also remember freedom fighter Burgula Ramakrishna Rao, who was born on 13th March 1899 at Kalvakurti, now in Telangana. Rao is known for his struggles against the Nizam in the princely state of Hyderabad.
Rao actively participated in the freedom struggle and took part in the Quit India movement. He joined hands with Swami Ramanand Tirth and many other leaders to fight against the Nizam and played a significant role in the merging of Hyderabad with independent India. In the first state assembly elections held in 1952, he got elected from the Shadnagar constituency and served as the first chief minister of Hyderabad state.
Rao served as the first governor of Kerala from 1956 to 1960 and as the governor of Uttar Pradesh till 1962. He continued to work for the betterment of people till his death on 14 September 1967.
In businesses today, benchmark indices ended on a weak note today with Nifty below 22,000 amid selling across the sectors. The 30-share Sensex plunged 906 points or 1.23% to close at 72,762 and the NSE Nifty tumbled 338 points or 1.51% to finish at 21,998.
और अब चलते हैं खेल के मैदान पर और जानते हैं आज की खेल गतिविधियां। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत आज ब्रिटेन के बर्मिंघम में अपने अपने पुरुष एकल अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन से होगा, जबकि राजावत का सामना इंडोनेशियाई खिलाड़ी चिको और डवी वोडियो से होगा। विश्व की नंबर वन पुरुष युगल जोड़ी भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और क्रिकेट में आज महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स के साथ होगा। मैच शाम 7:30 पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कल वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि और जयंती या जन्म दिवस।
यस, एंड वी स्टार्ट ऑफ विद मोहम्मद नसीर हुसैन खान, हु पास्ड ऑन दिस डे इन 2002, बेटर नोन एज नसीर हुसैन। ही वाज अ फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। विद अ करियर स्पैनिंग डेकेड्स, हुसैन हैज बीन क्रेडिटेड एज अ मेजर ट्रेंडसेटर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। फॉर एग्जाम्पल, ही डायरेक्टेड यादों की बारात इन 1973, विच क्रिएटेड द हिंदी लैंग्वेज मसाला फिल्म जॉनरा that defined Hindi cinema in the 1970s and 80s, and he wrote and produced Kayamat Se Kayamat Tak in 1988, which set the Hindi language musical romance template that defined Hindi cinema in the 1990s. Let's listen in to a song from that movie.
Kele hai, to kya hum hai? साथ हो तेरा,
तेरे तो है हम सबसे सनम।
और आज मराठा राजनेता नाना फडणवीस की पुण्यतिथि है। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। वो अपनी चतुराई और बुद्धिमता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव की स्वयं पेशवा बनने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। उनका टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ। नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक छत्र के नीचे एकत्र करने का सफल प्रयास किया और इसीलिए यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मेकियावेली कहा जाता था।
शफी इनामदार पास्ड ऑन दिस डे 1996। ही वाज एन इंडियन एक्टर। ही स्टार्टेड हिज फिल्म करियर विद द फिल्म विजेता एंड कंटिन्यूड इट इन अर्ध सत्य। He acted in several television serials, including Ye Jo Hai Zindagi. His most notable film roles include the inspector in Aaj Ki Awaaz, the villain in Awam, and a friend of the hero in films like Nazrana, Anokha Rishta, and Amrit. Some of his other successful films are Kudrat, Kanoon, Zulm, Sada Suhagan, and Love 86.
और भारत के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां की आज पुण्यतिथि है। उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। उस्ताद विलायत खां का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सितार वादन से जुड़ा रहा। पिता इनायत हुसैन खां से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे। विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताबे सितार का सम्मान दिया था। ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे।
Yes, and along with Imdad Khan, Inayat Khan and Imrat Khan, he is credited with creating and developing Gayaki Ang, a technique that emulates the vocal melisma of Hindustani classical music on the sitar. And he also recorded his first 78 RPM disc at a young age and gave his last concert in 2004 at the age of 75. And he has composed the music for several films, including Jal Sagar in 1958, Guru 1969 and Kadambari in 1976. Is listening to a bit of his music.
वादक के रूप में विलायत खान ने 5 दशक से भी अधिक समय तक अपने वादन से सबको सम्मोहित किया। सितार के इस महान वादक का निधन आज ही के दिन 2004 में फेफड़े के कैंसर की वजह से हुआ था, और उन्हें अपने विशेष योगदान के लिए 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण सम्मान दिए गए थे। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए भारत सरकार का ये सम्मान स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में या सितार वादन के क्षेत्र में उन्हें समुचित सम्मान नहीं दिया है।
जॉन पॉल लार्किन वॉज बॉर्न इन 1942, नोन प्रोफेशनली एज कैटमैन जॉन। ही वॉज एन अमेरिकन म्यूजिशियन, a prolific jazz pianist and vocalist for several decades. He rose to prominence during the 1990s through his fusion of scat singing and dance music. He recorded 5 albums, which was released between 1986 and 2001. Let's listen in to one of his hit tracks.
रसायनज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देशप्रेमी चुनीलाल बसु का जन्मदिवस है। वे रसायन विज्ञान के मेधावी विद्यार्थी थे और उन्होंने ग्रामीण बंगाल में स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि हमारा वर्तमान भोजन सही नहीं है, और उन्होंने 1889 से 1920 तक रासायनिक परीक्षक के तौर पर कार्य किया।
विलियम हॉल मेसी जूनियर वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1950। ही इज एन अमेरिकन एक्टर। His film career has been built on appearances in small, independent films, though he has also appeared in mainstream cinema. His starring roles include those in Fargo, 1996, Boogie Nights, 1997, Mystery Man, 1999, Jurassic Park 3, 2001, Cellular, 2004, Bobby, 2006, Wild Hogs, 2007, and Shorts, 2009. Macy has won 2 Emmy Awards and 4 Actors Guild Awards, while his performance in Fargo earned a nomination for the Academy Award for Best as Supporting Actor. From 2011 to 2021, he played Frank Gallagher, a main character in Shameless, the Showtime adaptation of the British television series. Macy has been married to Felicity Huffman since 1997, and also Divya Mohammed Siraj was born on this day in 1994. He is an Indian international cricketer who plays as a right-arm fast bowler for the Indian national team. He also plays for Royal Challengers Bangalore in the Indian Premier League and Hyderabad in domestic cricket. And in 2017, he played for Sunrisers Hyderabad IPL team.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।